वाणी चल रही थी 30 अक्टूबर 1966 की।
The Vani dated 30th October 1966 was being narrated.
Case 3 के आदमी बात चल रही थी, तुम बच्चे जर्गवासी थे।
We were discussing the topic in the beginning of the third page. You children were the residents of hell.
अभी तुम हो संगम युगवासी।
Now you are the residents of the confluence age.
अभी तुम अपने को नरकवासी नहीं समझते हो।
You don't consider yourselves to be the resident of hell now.
क्यों?
Why?
संगम पर है। संगम पर है।
नरकवासी समझेंगे तो नरक के राजा को याद करेंगे।
If you consider yourselves to be the resident of hell, you will remember the king of hell.
संगम युगवासी समझेंगे।
If you consider yourself to be the resident of the confluence age,
तो संगम मुख का जो मुखिया है वो याद आएगा।
You will remember the head of the confluence age.
यथा राजा
तथा प्रजा।
तथा प्रजा हो जाती है।
As is the king, so are the subjects.
तो तुम संगम युगवासी हो।
So you are the residents of the confluence age.
बाकी सब है नरकवासी।
All the others are the residents of hell.
तो अपन को वो तो समझते नहीं है।
But they don't consider themselves to be that.
नारद का मिसाल है।
That is the example of Narad.
किसका?
Whose?
नारद।
नारद।
नार माना? क्या जल?
Nar means the water of knowledge.
Da mana dene wala.
Da means the one who gives.
Jo dusron ko gyan jal deta tha.
The one who gave the water of knowledge to others.
Kya kehta tha?
What did he say?
Chalo Vaikunth.
Let's go to Vaikunth.
Hai? Vaikunth vasi bano, chalo Vaikunth, aur khud kahan ghoomta tha?
Become the residents of Vaikunth. Let's go to Vaikunth. And where did he himself wander?
Narak
ki duniya mein.
In the world of hell.
To Narad kiska misal hua?
So whose example is Narad?
Jo narakvasi hote hain, narakiyon ke rajya mein rehte hain, wo narakvasi jo bhi dusron ko gyan dene ke chakkar mein zyada rehte hain, khud gyan ki dharana काम करती
है। द रेजिडेंट ऑफ हेल हू रिसाइड इन द किंगडम ऑफ हेल दे आर मोर आफ्टर नरेटिंग द नॉलेज टू अदर्स वेयर एज दे देमसेल्व्स असिमिलेट लेस नॉलेज।
वो नारद कौन हुए नंबर वाइज?
हू आर दोस नंबर वाइज नारद?
जो भी कम कलाओं वाले ज्ञान धारण करने वाले नारायण है, जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, पूरा ज्ञान नहीं उठाते, पूरी ज्ञान की धारणा नहीं कर पाते, वही कम कलाओं वाले नारद नंबरवार नारायण अभी भी क्या कर रहे हैं?
द नारायण विथ फ्यूअर सेलेस्टियल डिग्रीज हु असिमिलेट द नॉलेज नंबर वाइज हु कन्वर्ट टू अदर रिलीजन्स एंड डोंट ग्रास्प द कम्प्लीट नॉलेज हु आर अनेबल टू असिमिलेट द नॉलेज कम्प्लीटली What are those Narad with fewer celestial degrees, the number wise Narayan, doing even now?
दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं।
They are giving the knowledge to others.
लेकिन खुद स्वर्गवासी बुद्धि नहीं बना पा रहे।
But they themselves aren't able to make their intellect the resident of heaven.
स्वर्गवासी बुद्धि बने।
If the intellect becomes the resident of heaven,
तो बुद्धि में स्वर्ग का ही मनन चिंतन मंथन चलता रहे।
It will just keep thinking and churning about heaven.
संगम युगवासी बने।
If it becomes the resident of the confluence age,
तो संगम युग की धारणाएं याद आती रहे।
It will keep remembering the dharanas of the confluence age.
फिर भी बुद्धि खिंचती कहाँ है?
Nevertheless, where is the intellect attracted?
मेलमाड़िया अटारियां बनाने में बुद्धि जाती।
इट गोज टूवर्ड्स बिल्डिंग पैलेसेस एंड बिल्डिंग्स।
इस दुनिया का आन मर्तबा किसी न किसी तरफ बुद्धि जाती।
It goes towards taking the honor and position of this world.
तो नारद का मिसाल देते हैं.
So the example of Narad is given.
क्या चाहता था?
What did he want?
लक्ष्मी को मरना चाहता था.
He wanted to marry Lakshmi.
और सूरत कैसी थी?
And how was his face?
बंदर जैसी सूरत.
He had a monkey face.
तो बंदर की सूरत और लक्ष्मी को वरण करने की इच्छा.
He had a monkey face and he wanted to marry Lakshmi.
बाप कहते हैं.
The father says.
इन बंदरों को भी अब मंगल लायक बनाने के लिए आया हुआ हूँ.
Now I have come to transform even these monkeys into those who are worthy of being worshipped in temples.
लेकिन कोई कोई सुधरते ही नहीं है.
But some don't reform at all.
बंदर के बंदर ही रह जाते हैं.
They remain the same monkeys.
तो वो लक्ष्मी को वरण नहीं कर पाते.
So they aren't able to marry Lakshmi.
क्योंकि नई दुनिया में तो यथा राजा तथा प्रजा सब नारायण जैसी आत्माएं होंगी. सब लक्ष्मी जैसी आत्माएं होंगी.
It is because in the new world, all the souls will be like Lakshmi and Narayan according to the saying, as is the king, so are the subjects.
कम नहीं होंगी.
They won't be lower than them.
16 कला संपूर्ण का वर्णन करना उनके भाग्य में है ही नहीं.
It isn't in their fate to marry the one complete with 16 celestial degrees.
इस समय के मनुष्य साहब बंदर मिसल.
All the human beings at this time are like monkeys.
सूरत मनुष्य की है, सीरत बंदर की.
They have the face of a human being, but their character is like that of a monkey.
बड़े बड़े राजाए भी लक्ष्मी नारायण के चरणों में जरूर झुकेंगे.
Even the great kings will bow before Lakshmi and Narayan.
कौन से लक्ष्मी नारायण के चरणों में झुकते हैं?
They bow before which Lakshmi and Narayan?
जो संगम युग लक्ष्मी नारायण स्वयं संगम युग के नारायण बनते हैं, नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, उनके चरणों में झुकते हैं.
They bow before the confluent age Lakshmi and Narayan, who directly become Narayan from a man and Lakshmi from a woman in a golden confluent age.
अब ये नारायण कोई पतित को पावन बनाने वाले थोड़े ही हैं.
Well, this Narayan doesn't purify the sinful ones.
Narayan patiton ko pavan banata hai ya Narayan mein aane wali supreme soul patiton ko pavan banati hai?
Does Narayan purify the sinful ones or does the supreme soul who comes in him purify the impure ones?
Kiski drishti se shakti sudharti
hai? Through whose vision is the world reformed?
Supreme soul ki drishti se shakti sudharti hai.
It is reformed through the vision of the supreme soul.
रहम दिल किसको कहा जाता है? यह भी किसी को नहीं मालूम.
No one knows who is called merciful.
रहम दिल तो एक ही बाप है.
It is only the one father who is merciful.
कौन सा बाप?
Which father?
जो supreme soul बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है.
The supreme soul who is the father of the point souls.
वो आप ही आए करके सब पत्थर बुद्धि मनुष्यों को पार्थ बुद्धि बनाते हैं.
Himself comes and transforms all the human beings with a stone-like intellect into those with a Paras-like intellect.
अपने आप ही आते हैं और आकर के क्या करके जाते हैं?
He comes on his own. And what does he do before going back?
पार्थ बुद्धि बनाकर जाते हैं.
He makes them into those with a Paras-like intellect and goes.
ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आए और ज्ञान सुना के चले जाएं और पत्थर बुद्धि के पत्थर बुद्धि सब बने रहे.
It isn't that he came in the body of Brahma, narrated the knowledge, went back and everyone remained those with a stone-like intellect.
नहीं.
No.
उनका वापस जाना होता ही तब है जब पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बना के जाए.
He goes back only when he transforms those with a stone-like intellect into those with a Paras-like intellect.
और आकर के बनाते हैं.
And he does that after coming here.
ऐसे नहीं ज्ञान सुना के चले जाने से हम स्वतः ही पार्थ बुद्धि बनते रहेंगे।
It isn't that he narrates the knowledge and goes back and you will continue to become those with a Paris-like intellect on your own.
Abhi tum so devata ban rahe ho.
Now you yourself are becoming deity.
Wo Narad nahi ban rahe hai.
You aren't becoming that Narad.
Tum so devata, kaun se devata?
You yourself are becoming deities. Which deities?
Jinki mandiron mein pooja hoti hai.
Those who are worshipped in the temples.
Sola kala sampurna Narayan ki puja hoti hai ya kam kala wale Narayan ki puja hoti hai?
Is the Narayan complete with 16 celestial degrees worshipped or are the Narayan with fewer celestial degrees worshipped?
Sola kala sampurna Narayan ki puja hoti hai.
The Narayan complete with 16 celestial degrees is worshipped.
Ye hai narse Narayan banne ki paathshala.
This is the very school to become Narayan from a man.
Isi janam mein nar aur isi janam mein padhai padke nar se Narayan bante hain.
You are a man in this birth and you become Narayan from a man after studying the knowledge in this very birth.
Ye Rajyog hai.
This is the Rajyog.
Rishi Muni aadi koi ko pata nahi hai ki Geeta ka Rajyog kisne sikhaya.
The sages, saints, etc. don't know who taught the Raj Yoga of the Gita.
किसने सिखाया?
Who taught it?
दुनिया भी ऋषि मुनियों को तो पता ही नहीं है, वो तो भाषण में भाषणबाजी करते रहते हैं गीता का भगवान।
The worldly sages and saints don't know that at all. They just keep giving speeches. God of the Gita.
कौन था?
Who was he?
कृष्ण था।
कृष्ण।
चलो उनकी बात छोड़ दो।
Well, leave their question.
ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ढेर सारे ऋषि मुनि ऐसे हैं पुराने पुराने। जब से ये यज्ञ शुरू हुआ तब से पढ़ाई पढ़ते चले आ रहे, लेकिन अब तक भी उनकी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है?
There are numerous old sages and saints in the confluence-based Brahmin world who are studying the knowledge ever since this yajna started. However, what is that in their intellect until now?
कि गीता का ज्ञान दाता दाता लेखराज कृष्ण ही साकार में भगवान है।
दादा लेखराज alias कृष्ण himself is God, the giver of the knowledge of the Gita in a corporeal form.
इसके अलावा कोई दूसरा मनुष्य मात्र गीता का भगवान नहीं है।
No other human being apart from him is God of the Gita.
और तुम्हारी बुद्धि में अभी नंबर वार बैठा है।
Now it has sat in your intellect number wise.
क्या?
What?
कि गीता का भगवान कृष्ण रूप दादा लेखराज नहीं है।
कृष्ण alias दादा लेखराज isn't God of the Gita.
साकार रूप जिन्हें वो माने बैठते हैं, अगर वो गीता का भगवान होता तो उनके चित्त रखने के लिए मुरलियों में मना नहीं किया जाता। तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि गीता का भगवान गीता ज्ञान दाता जो मुख से आकर के गीता ज्ञान सुनाता है, गीता ज्ञान अमृत पिलाता है। अमृत कहा ही तब जाता है जब मंथन हो।
Had the corporeal form whom they believe been God of the Gita, they wouldn't have been prohibited to keep his photo in the murlis. It has sat in your intellect. God of the Gita, the giver of the knowledge of the Gita, the one who comes and narrates the knowledge of the Gita through the mouth and makes others drink the nectar of the knowledge of the Gita, it is called nectar only when you think and churn upon it.
Brahma ke dwara jo vani chalai gayi,
the vani which was narrated through Brahma,
usko Gita gyan amrit nahi kahenge,
won't be called the nectar of the knowledge of the Gita.
उसका उस समय तक मंथन नहीं हुआ।
It wasn't churned until then.
सागर मंथन होता है।
When the ocean is churned,
तब अमृत कलश निकलता है।
It is then that the pot of nectar emerges.
तो सागर मंथन अभी हो रहा है।
So the churning of the ocean is taking place now.
अभी सागर मंथन में देवताओं ने हिस्सा लिया है।
The deities have participated in the churning of the ocean now.
अभी असुरों ने पूरा पूरा हिस्सा नहीं लिया, वो भी लेने वाले हैं।
The demons haven't fully participated in it. They are also going to participate in it.
वो जब हिस्सा लेते हैं तो क्या करते हैं?
When they participate in it, what do?
अमृत कलश छीन करके भागना चाहते
हैं। They want to snatch the pot of nectar and run away.
तो बोला?
So it was said.
अभी अमृत मंथन हो रहा है।
The churning on the nectar is taking place now.
नंबर वार पुरुषार्थ संसार बुद्धि में बैठ रहा है।
It is sitting in your intellect, number wise, according to the purushard.
मंथन होता है।
When the churning takes place.
सागर मंथन होता है।
When the churning of the ocean takes place.
माने ज्ञान सागर का जो भी ज्ञान है, उसका जब मनन चिंतन मंथन होता है, तो असुर अपनी तरफ खींचते और देवताएं अपनी तरफ खींचते।
It means when the knowledge of the ocean of knowledge is thought and churned, the demons pull it towards themselves and the deities pull it towards themselves.
ज्ञान कलश के लिए मारा मारी हो पड़ती।
They start beating and killing each other for the pot of nectar.
बाप कहते हैं उनकी बुद्धि में बैठा ही नहीं।
The father says it hasn't sat in their intellect at all.
इसमें मारा मारी अथवा बाहुबल की बात नहीं है।
There is no question of beating and killing each other or using physical power in it.
ये तो बुद्धि में बैठने की बात है, गीता का भगवान कौन है?
It is something to sit in your intellect who God of the Gita is.
गीता का भगवान वो निराकार जो निराकारी स्टेज में संसार में प्रत्यक्ष होता है। जैसे बाप प्रत्यक्ष होता है, वैसे आप बच्चों की निराकारी स्टेज से आपकी भी प्रत्यक्षता होनी है।
The incorporeal one who is revealed in this world in the incorporeal form himself is God of the Gita.
Just like the father is revealed, similarly you children are also revealed through your incorporeal stage.
बच्चों की भी प्रत्यक्षता होती है और बाप की भी प्रत्यक्षता होती है।
The children as well as the father are revealed.
देर मनुष्य गीता सुनते
हैं। Numerous people listen to the Gita.
परंतु ये नहीं जानते।
But they don't know.
कि संगम युग पर राजयोग सीख करके कृष्ण की सोल राजाई प्राप्त करती है।
That the soul of Krishna attains kingship after studying the Rajyoga in the confluence age.
कृष्ण की सोल गीता के भगवान से गीता ज्ञान सुन करके फिर राजाई प्राप्त करती है।
He listens to the knowledge of the Gita from God of the Gita and attains kingship.
उन्होंने कृष्ण को ही गीता का भगवान समझ लिया।
They have considered Krishna himself to be God of the Gita.
उन बिचारों को पता ही नहीं।
Those poor ones don't know at all.
समझते हैं कृष्ण ने राजयोग सिखाया।
They think that Krishna taught Rajyoga.
कह भी देते हैं कृष्ण भगवान वाच।
They also say Krishna भगवान वाच।
मन मना भव। अब कृष्ण कैसे कहेंगे मन मना भव?
Well, how will Krishna say मन मना भव?
कृष्ण तो परमात्मा है ही नहीं।
He isn't the supreme soul at all.
वो परम पार्टधारी परमात्मा का पार्ट नहीं है।
He isn't the part of the supreme soul, the supreme actor.
परमात्मा माना आदि से लेकर के अंत तक परम पार्ट बजाने वाला।
The supreme soul means the one who plays the supreme part from the beginning till the end.
परम पार्ट ड्रामा में किसका होता है?
Who has the supreme part in the drama?
हीरो का होता है।
The hero has it.
हीरो तो आदि से लेकर के अंत तक पूरा पार्ट बजाता है।
The hero plays the complete part from the beginning till the end.
5000 वर्ष के ड्रामा में
In the 5000 years drama,
कृष्ण की सोल और कृष्ण के जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वो तो पूरा 5000 वर्ष तक षष्ठ रूपी रंगमंच पर पार्ट नहीं बजाते।
The soul of Krishna and all his followers don't play their part for complete 5000 years on this stage-like world.
उन्होंने तो 69 में शरीर छोड़ दिया।
He left his body in 69.
अब 50 वर्ष उनके तो कम हो जाएंगे.
वेल, ही विल नो डाउट फॉल शॉर्ट ऑफ 50 इयर्स.
50 वर्ष जब कम हो गए तो हीरो पार्टधारी का पार्ट कैसे हुआ?
When he falls short of 50 years, how can he be the part of the hero actor?
अब वो तो सत्यु का प्रिंस है.
Well, he is the prince of the golden age.
जो संगम युग पर राजयोग सीखकर राजा ही प्राप्त कर रहे हैं.
Who is studying the Rajyog and attaining the kingship in the confluence age?
माने अभी भी कृष्ण की सोल कोई पढ़ाई पढ़ाने वाली नहीं है.
It means the soul of Krishna is in the teacher even now.
अभी भी पढ़ाई पढ़ रही.
In fact, he is studying.
उनको फिर भगवान बना दिया है.
However, he has been made God.
देर मनुष्य गीता सुनते हैं.
Numerous people listen to the Gita.
परंतु एक को भी पता नहीं है कि गीता का भगवान शिव कैसे राजयोग सिखाए गए.
But not even a single person knows that how Shiv, God of the Gita, is teaching the Rajyog.
कह देते हैं वो ही है.
They say he, Krishna himself is that.
ऐसे मनुष्यों में कितना माथा मारना पड़ता है.
You have to rack your brain so much after such people.
तो भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठता.
Nevertheless, it doesn't sit in their intellect.
शिव बाबा को भी आश्चर्य होता.
Even Shiv Baba is surprised.
इनको पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते इतने साल हो गए अभी तक उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठता कि गीता का ज्ञान दाता प्रैक्टिकल में साकार में कौन है.
थिंकिंग सो मेनी इयर्स हैव पास्ड व्हाइल टीचिंग देम बट इट हैजंट सैट इन देयर इंटेलेक्ट अंटिल नाउ हु द गिवर ऑफ द नॉलेज ऑफ द गीता इज इन द कॉर्पोरियल फॉर्म इन प्रैक्टिस.
अभी भी प्रैक्टिकल कर्म ऐसे ही करते चले आ रहे हैं.
Still, they continue to perform the same deeds in practice.
जैसे शिवोहम बन करके कोई गुरु लोग बैठते रहे.
Like the gurus have been calling themselves शिवोहम.
मुख से कहते रहे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है.
They have been saying through their mouth, God isn't omnipresent.
लेकिन सर्वव्यापी नहीं है ये कहने के बावजूद भी उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठता है कि वो एक व्यापी का है.
But despite saying that he isn't omnipresent, it doesn't sit in their intellect where he is present in one being.
सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी बताना चाहिए ना.
If he isn't omnipresent, they should mention through who he is एक व्यापी, shouldn't they?
नहीं बता सकते.
But they can't mention that.
अगर कोई उनको समझाए भी,
even if someone explains to them,
तो उनकी बुद्धि में बैठने वाला नहीं है.
It isn't going to sit in their intellect.
जरूर गीता पहले बनाई होगी.
Definitely, the Gita was written first.
मनुष्य गुरुओं ने पहले कौन सा शास्त्र रचा?
Which scripture did the human gurus write first of all?
गीता रखी होगी.
They must have written the Gita.
ये सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग.
All these scriptures are of the path of bhakti.
ज्ञान मार्ग का एक भी शास्त्र नहीं.
Not even a single scripture belongs to the path of knowledge.
हाँ, गीता है नंबर वन शास्त्र.
Yes, the Gita is the number one scripture.
पीछे वेद उपनिषद आदि सब निकले हैं.
The Vedas, the Upanishads, and so on have emerged later.
तो भक्ति मार्ग में तो गीता बताए थी पहला शास्त्र.
So the Gita was said to be the first scripture in the path of bhakti.
पहला पहला शासन करने वाला संविधान है.
It is the very first constitution to rule.
तो ज्ञान मार्ग में पहला पहला कौन होगा?
Who is the first to rule in the path of knowledge?
ब्राह्मण की दुनिया में पहले पहले शासन शुरुआत किसने की होगी?
Who would have started to rule first in the world of Brahmins?
वो तो जड़ गीता को बताए देते.
They say it for the non-living Gita.
शूटिंग कहाँ की होती है? भक्ति मार्ग में जो भी शूटिंग होती है वो कहाँ की यादगार है?
where is the shooting performed? Whatever shooting is performed in the path of bhakti, where is it the yadgar of? The confluence is.
जरूर संगम युग में कोई चैतन्य गीता माता है.
There is definitely a living mother Gita in the confluence age.
जिसने यज्ञ के आदि से ही यज्ञ को कंट्रोल करना शुरू किया था, तो वो पहला है शास्त्र.
Who had started to control the yajna from the very beginning. So, it is the first scripture.
Upanishad Veda aadi sab baad mein nikle.
The Upanishads, the Vedas, etc. have all emerged later.
Kya?
What?
Ye nahi baat.
This is a new idea.
Vidwan acharyon ko ye baat bataye.
If you tell the scholars and teachers
ki pehle Gita nikli hai aur baad mein Veda Upanishad aadi nikle,
that the Gita has emerged first and the Vedas, the Upanishads, etc. have emerged after it,
तो कभी मानेंगे नहीं.
They will never believe it.
वो वेद उपनिषद आदि सब गीता के बाल बच्चे.
All those Vedas, the Upanishads and so on are the children of the Gita.
रचना है.
They are its creation.
यज्ञ के आदि में वो गीता माता ही सर्वमान्य थी.
In the beginning of the yajna, the mother Gita alone was accepted by everyone.
Prajapita bhi kiski aulad?
Whose progeny is Prajapita as well?
Eh?
Gita mata.
Student of the mother Gita.
Kaise?
How?
Usne usko bata diya.
Student, she herself told him that.
Ha?
Yes.
Prajapita ब्रह्मा का बच्चा न बने तो प्रजापिता हो सकता है क्या?
Until प्रजापिता becomes the child of ब्रह्मा, can he be प्रजापिता?
पहला ब्राह्मण हो सकता है क्या?
Can he be the first Brahmin?
जो पहला ब्राह्मण बनेगा वो ही देवता बनेगा.
The one who becomes the first Brahmin, he alone will become a deity.
और ब्राह्मण बनता ही तब है जब ब्रह्मा की औलाद बने.
एंड ही बिकम्स अ ब्राह्मण ओनली व्हेन ही बिकम्स द प्रोजेनी ऑफ ब्रह्मा.
तो ब्रह्मा के मुख में पहले प्रवेश करके शिव ने ब्रह्मा के साक्षात्कारों को सुनाया.
सो फर्स्ट शिव एंटर्ड द माउथ ऑफ ब्रह्मा एंड नरेटेड हिज विजन्स.
और उन साक्षात्कारों का अर्थ पहले पहले सुना भी किसने?
एंड हु लिसन्ड टू द मीनिंग ऑफ दोज विजन्स फर्स्ट? स्टूडेंट प्रजापिता.
गीता माता ने सुना?
द मदर गीता लिसन टू इट.
अर्थ?
नो द मीनिंग.
प्रजापिता ने तो साक्षात्कारों की बात सुनी.
प्रजापिता लिसन टू द विजन्स.
लेकिन जो अर्थ बोला उसका वो पहले पहले कृष्ण की सोल ने नहीं सुना. किसने सुना?
बट द सोल ऑफ कृष्ण डिडंट लिसन टू देयर मीनिंग व्हिच वाज नरेटेड फर्स्ट. हु लिसन टू इट फर्स्ट ऑफ ऑल?
गीता माता ने सुना.
द मदर गीता लिसन टू इट.
साथ में कोई एक और बैठी थी.
देयर वाज अनदर मदर सिटिंग अलोंग विद हर.
उसने सुनने के साथ साथ अंश मात्र थोड़ा समझा भी.
She also understood it a bit along with listening to it.
और गीता माता ने सुना और दूसरों को सुनाया.
However, the mother Gita listened to it and narrated it to others.
तो सुनने सुनाने का जो फाउंडेशन है वो किसके द्वारा पड़ा?
So, who laid the foundation of listening and narrating the knowledge?
गीता माता के द्वारा पढ़ा.
इट वॉज लेट टू द मदर गीता.
उस समय उसके ज्ञान की गहराई को समझा किसी ने
नहीं. नो वन अंडरस्टूड द डेप्थ ऑफ नॉलेज एट दैट टाइम.
अगर समझा होता.
हैव दे अंडरस्टूड इट?
तो भक्ति मार्ग की कर्म कांड नहीं करते.
दे वुडंट हैव परफॉर्म्ड द कर्म कांड ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति.
जैसे यज्ञ के आदि में ओम 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 की ध्वनि का उच्चारण होता था.
Like they used to chant the sound of Om in the beginning of the yajna.
Bhakti marg mein vacha se kirtan jyada karte hain.
they perform many kirtans orally in the path of bhakti.
धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनकी अर्थ पट में बैठ के सुनाते हैं.
They read the religious scriptures and narrate their meanings to others.
यज्ञ के आदि में भी गीता के अर्थ बैठ करके सुनाते हैं.
They used to sit and narrate the meanings of the Gita in the beginning of the yajna too.
वही संस्कृत की गीता पढ़ी जाती थी.
The same Sanskrit Gita was read and its meaning was explained.
और उसके अर्थ बताते थे.
And its meaning was explained.
तो 14 साल तक यज्ञ के अंदर वो भक्ति का फाउंडेशन चलता रहा.
The foundation of bhakti continued to be laid in the yajna for 14 years.
Gyan kaan samat.
Which was just a trace of knowledge.
Hindustan Pakistan ka jab bantwara hua to Dada Lekhraj ke tan mein san 47 mein pehle Shiv Baba ne pravesh kiya.
When was the partition of Hindustan and Pakistan, Shiv Baba entered the body of Dada Lekhraj in the year 1947, first of all.
तब से मुरली निकलती चली आई. कहाँ से?
The murli started to be narrated since then. From where?
Karachi.
From Karachi.
तो उस समय से पहली मूर्ति जिसने विशेष उस मूर्ति का पाठ बजाया वो मूर्तिमान रूप में प्रत्यक्ष हो गई.
From that time, the first personality who especially played the part of that personality was revealed in the corporeal form.
अगर संतिस में ही प्रत्यक्ष हुई होती,
had he been revealed in the year 36,
तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय उस समय से ही नाम पड़ जाता.
The institution would have been named ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय since that very time.
उस समय ब्रह्मा का नाम निशान किसी को मालूम नहीं था.
No one knew the name and trace of Brahma at that time.
थोड़े समय के बाद 50-51 में जब माउंट आबू में आ गए.
When they came to Mount Abu in the year 50-51 after some time.
तो रूपरेखा बने कि ये ब्रह्मा है और ये इनका विद्यालय.
They got a framework that he is Brahma and this is his institution.
ये इनकी बच्चियां ब्रह्मा कुमारी हैं.
These are his daughters, the Brahma Kumaris.
और एक रूपरेखा बन गई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय.
So they established a framework named ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय.
पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हुई.
The first personality was revealed.
टाइम लग गया ना.
It took time, didn't it?
ऐसे ही दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है.
सिमिलरली व्हेन द सेकंड पर्सनालिटी इज रिवील्ड
तो शंकर पार्टी के नाम से विख्यात हो जाती
है. इट बिकम्स पॉपुलर विद द नेम शंकर पार्टी.
हालांकि मुरली में बाबा ने कहीं शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी, ब्रह्मा पार्टी नहीं बोला
है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बाबा हैजंट मेंशनड एनीवेयर अबाउट शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी एंड ड्रामा पार्टी इन द मुरली.
लेकिन फिर भी ड्रामा प्ले अनुसार विख्यात हो जाती है.
Nevertheless, it becomes famous by that name according to the drama plan.
इसका मतलब शंकर पार्टी है तो जरूर कोई ब्रह्मा पार्टी भी रही होगी.
It means if there is the Shankar party, there must be some Brahma party too.
ब्रह्मा पार्टी, विष्णु पार्टी. शंकर पार्टी,
ब्रह्मा पार्टी, विष्णु पार्टी एंड शंकर पार्टी.
ये पार्टी वालिया मनुष्यों का काम होता है या शिव के बच्चे जो पहलौटी के हैं, पहले पहले पैदा होने वाले उनका काम है.
इज टू फॉर्म सेपरेट पार्टी द टास्क ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स और इज इट द टास्क ऑफ द फर्स्ट बॉर्न चिल्ड्रन ऑफ शिव हु आर बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल.
ये मनुष्यों का काम है पार्टीबाजी करना.
टू फॉर्म सेपरेट पार्टीज इज द टास्क ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स.
चलो कोई भी बाजी सही.
वेल बीट एनी डिविजन.
ड्रामा प्लेन अनुसार उनकी बाजी से ये साबित हो जाता है कि शंकर पार्टी है तो जरूर कोई शंकर भी होगा।
It is proved through it, according to the drama plan, that if there is the Shankar party, there would certainly be Shankar too.
उसका कोई मुखिया भी तो होगा।
It would definitely have a head.
Foundation पड़ रहा है।
The foundation is being laid.
जैसे 2000 के भक्ति मार्ग में ब्रह्म समाजी हुए, शैव समाजी हुए, शैव संप्रदाय हुआ, वैष्णव संप्रदाय हुआ, तो उनका फाउंडेशन कहाँ पड़ा था, कब पड़ा था?
Just like there were Brahma Samajis, Shaiv Samajis, the Shaiv community, the Vaishnav community, in the 2500 years of the path of Bhakti, where and when was their foundation laid?
Sangam, foundation pada.
It was laid in the confluence age.
ये foundation अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग समाज का बाबा ने नहीं डाला.
Baba didn't lay this foundation of different communities and sects.
बाबा तो सारी दुनिया को मिला करके एक वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए आया हुआ।
In fact, he has come to unite the entire world to form one Vasudev Kutumbakam. That is, the entire world is a family.
एक ही मुखिया होगा।
There will be just one head.
कोई पार्टीबाजी नहीं होगी जो बाबा दुनिया स्थापन करेगा उसमें।
There won't be separate parties in the world which Baba establishes.
लेकिन मनुष्य गुरु बैठ करके ये भेद पैदा कर देते।
However, the human guru sit and create these differences.
तो पहली मूर्ति भी प्रत्यक्ष होने का कारण बना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय।
So, the reason to reveal the first personality was the Brahma Kumari Ishwariya Vishwavidyalaya.
दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष करने का भी कारण बना शंकर पार्टी है, शंकर पार्टी है, शंकर पार्टी है।
The reason to reveal the second personality was, everyone started saying, there is a Shankar party, there is a Shankar party.
और अभी तीसरी मूर्ति भी प्रत्यक्ष होगी।
Now, the third personality will also be revealed.
वो भी रंगमंच पर आएगी।
She will also come on the stage.
एडवांस पार्टी में से ही कोई निकले हुए डुप्लीकेट लोग हुए जिन्होंने देखा कि विष्णु तो निकल नहीं रहा है, अब हम विष्णु बन के बैठ जाएंगे।
There were some duplicate people who broke away from the advance party itself, who thought that Vishnu isn't being revealed, so they should become Vishnu.
तो उन्होंने विष्णु पार्टी शुरू कर दी।
So they formed the Vishnu party.
अब ऐसे थोड़ी विष्णु पार्टी हो जाती।
Well, the Vishnu party isn't formed this way.
विष्णु तो नई दुनिया का वह देवता है जिसके बारे में, जिसका जो संपन्न रूप है लक्ष्मी नारायण का, दुनिया में उसकी कोई भी प्रकार की ग्लानी नहीं मिलती।
विष्णु इज सच अ डीटी ऑफ द न्यू वर्ल्ड हुज कंप्लीट फॉर्म ऑफ लक्ष्मी नारायण इजंट डिफेम्ड इन एनी वे इन द वर्ल्ड।
सात देवताओं की ग्लानी मिलती है।
ऑल द डीटीज आर डिफेम्ड।
लक्ष्मी नारायण की कोई भी ग्लानी नहीं मिलती।
बट लक्ष्मी नारायण आर इन डिफेम्ड।
लक्ष्मी नारायण के मंदिर भव्य मंदिर बनाए जाते हैं।
मैग्निफिसेंट टेम्पल्स ऑफ लक्ष्मी नारायण आर बिल्ट।
कारण क्या है?
व्हाट इज द रीजन?
कि लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानी नहीं और सब देवताओं की ग्लानी है।
दैट लक्ष्मी नारायण आर इन डिफेम्ड एंड ऑल द अदर डीटीज आर डिफेम्ड।
देव देव महादेव की भी ग्लानी है, राम की भी ग्लानी है, कृष्ण की भी ग्लानी है।
इवन देव देव महादेव राम एंड कृष्ण आर डिफेंड।
लक्ष्मी नारायण की ग्लानी क्यों नहीं?
व्हाई आरंट लक्ष्मी नारायण डिफेंड?
क्योंकि जब वो संपूर्ण बनते हैं,
इट इज बिकॉज व्हेन दे बिकम कंप्लीट,
संपूर्ण बन करके युगल रूप में प्रत्यक्ष होते हैं
एंड आर रिवील्ड एज अ कपल,
तो संपन्नता की कोई ग्लानी नहीं कर सकता। 16 कला संपूर्ण में से चौथाई कला भी कम होगी, अंश मात्र भी कला कम होगी तो उनकी ग्लानी हो सकती है।
no one can defame their complete form. If they are short of even a quarter celestial degree, or even a little out of 16 celestial degrees, they can be defamed.
जब कुछ कोई कमी है ही नहीं,
when there is no shortcoming,
तो ग्लानी का सवाल ही पैदा नहीं होता.
There is no question of their defamation at all.
कंस की भी ग्लानी कब हुई?
When was even Krishna defamed?
कृष्ण को काला क्यों दिखाया?
When was he shown black?
कुछ काले कर्म किए होंगे, तो कृष्ण को काला मोड़ा दिखा दिया.
He must have performed some black deeds. This is why he has been shown with the black face.
राम की ग्लानी क्यों हुई? राम को काला चेहरा क्यों दिखाया?
Why was Ram defamed? Why is he shown with a black face?
कुछ काले कर्म हुए होंगे समाज से छुपा के.
He must have performed some black deeds by hiding it from the world.
जो कर्म समाज से छुपा के किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं?
What are the deeds that are performed by hiding it from the world called?
काला कर्म.
Black deeds.
काली कमाई सरकार की नजरों से छुपा के की जाती है.
The black earning is made by hiding it from the government.
शिवलिंग को भी काला बना दिया.
They have also shown the shivling to be black.
माना शिव तो काला नहीं है.
Well, Shiv isn't black.
लेकिन शिव जिस शरीरधारी लिंग में प्रवेश करता है, जिस शरीरधारी में प्रवेश करता है, वो तो जन्म जन्मांतर का काला है.
However, the bodily being, the ling which he enters, he is definitely black for many births.
Gora to nahi ban gaya.
He hasn't become fair.
Agar gora ban jaye,
if he becomes fair,
to jab tak jeena hai tab tak peena nahi ho sakta.
He doesn't need to drink the water of knowledge as long as he is alive.
Jab wo gora ban jayega, narayan ban jayega, to fir peene ki baat reh jayegi kya?
When he becomes fair, that is Narayan, will there be the question of drinking the water of knowledge?
Peena khatam ho jaye?
He will stop drinking it.
Shiv Baba ka part hi khatam ho jayega?
The very part of Shiv Baba will be over.
Kehte hai Murli se pyar mana Murli dhar se pyar?
It is said, love for the Murli meaning love for the Murli dhar. That is the narrator of the Murlis.
Murli dhar to Shiv Baba hai?
Shiv Baba is certainly the Murli dhar.
शिव बाबा से प्यार का मतलब क्या है?
What does to have love for Shiv Baba mean?
मुरली से प्यार?
To have love for the Murli.
अगर उसकी वाणी से ही प्यार न रहा,
if you don't have love for his very vani,
शिव का साकार स्वरूप इस संसार में क्या है?
What is the corporeal form of Shiv in this world?
वाणी ही तो है.
It is his very vani.
वाणी के अलावा कुछ रुपया पैसा लेकर के आता है क्या?
Does he bring any wealth or money other than the vani when he comes?
Dhan daulat milkiyat lekar ke aata hai kya?
Does he bring wealth or property when he comes?
Sato pradhan sattvik prakriti lekar ke aata hai kya?
Does he bring the sato pradhan and sattvik nature when he comes?
Nahin.
No.
Wo to gyan ki daulat hai usme.
In fact, he has the wealth of knowledge.
Gyan mana jankari. Jankari mana सच्चाई.
Knowledge means information. Information means truth.
इसलिए अंग्रेज लोग कहते भी हैं.
This is why the English also say.
God is truth.
God is truth.
भगवान क्या है?
What is God?
सच्चाई
है. He is truth.
सच्चाई को ही भगवान कहा जाता है.
Truth itself is called God.
झूठ है?
If he is false,
तो शैतान है.
He is a demon.
सच्चा है?
If he is true,
तो भगवान?
He is God.
तो झूठे शास्त्र पढ़ते पढ़ते सब नीचे गिरे.
So everyone has degraded by reading the false scriptures.
अभी है पिछाड़ी.
Now it is the end.
84 जन्म पूरे हुए.
84 births have completed.
अभी फिर सबको चलना है पहले नंबर के पास.
Now everyone has to go near the number one soul again.
क्या?
What?
जो अव्वल है, पहला है.
The one who is number one, the first.
कौन है अव्वल?
Who is first?
Hello. अलफ माना पहला नंबर,
अलफ मीन्स द फर्स्ट नंबर,
नुक्ता माने बिंदु,
नुक्ता मीन्स द पॉइंट,
उसको पहला नंबर नहीं कहेंगे,
ही वोंट बी कॉल्ड द फर्स्ट नंबर।
हिंदी को कोई नंबर नहीं दिया जा सकता
है, द पॉइंट कांट बी इंक्लूडेड इन द काउंटिंग।
बिंदु कितने भी लगा दिए जाए,
नो मैटर हाउ मेनी पॉइंट्स यू ड्रॉ,
कोई नंबर नहीं बनेगा,
इट कांट फॉर्म अ नंबर।
हाँ, बिंदु को किसी अंक के साथ लगाया जाए तो नंबर बन जाता है।
यस, इफ यू ड्रॉ अ पॉइंट विद अ नंबर इट फॉर्म्स अ नंबर।
तो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु किसी नंबर में नहीं आता,
सो द सुप्रीम सोल द पॉइंट ऑफ लाइट इज इन इंक्लूडेड इन द काउंटिंग।
नंबर में आए
इफ ही इज इंक्लूडेड इन द काउंटिंग,
सो चक्कर में भी आए,
ही शुड ऑल्सो पास थ्रू द साइकिल।
वो न नंबर में आता है और न इस शक्ति के चक्कर में आता है।
He is neither included in the counting, nor does he pass through this world cycle.
So, number lena achhi baat hai, kharab baat hai.
So, is it good or bad to be included in the counting? Student, it is good.
Hai? Achhi baat hai. Arey bro, to chakkar mein phans jao.
It is good. Arey, then you will be entangled in the cycle.
Hai? Agar number liya तो चक्कर में जरूर फंसना पड़े।
इफ यू आर इंक्लूडेड इन द काउंटिंग यू विल डेफिनेटली हैव टू बी एंटैंगल्ड इन द साइकिल।
तो बाप कहते हैं इस चक्कर में तो मैं भी बांधा हुआ।
सो द फादर शेयर सेज आई टू एम बाउंड इन दिस साइकिल।
क्या इस चक्कर में मुझे भी आना पड़ता है, लेकिन मैं आता हूँ, आते हुए भी दुनिया के चक्करों में फंसता नहीं है।
वॉट आई डू हैव टू कम इन द साइकिल, आई डू कम बट डिस्पाइट कमिंग इन द साइकिल आई डोंट गेट एंटैंगल्ड इन द क्लचेस ऑफ दिस वर्ल्ड।
मैं अभोक्ता हूँ,
आई एम अभोक्ता।
तुम सब आत्माएं भोगी हो,
ऑल ऑफ यू सोल्स आर भोगी,
और नंबर वार भोगी हो,
यू आर भोगी नंबर वाइज,
नंबर वार भोगी और नंबर वार पावन बनते हो,
यू बिकम भोगी एंड प्योर नंबर वाइज।
बाप समान स्टेज बना सकते हो,
यू कैन अटेन द स्टेज इक्वल टू द फादर,
लेकिन सदा काल के लिए,
बट नॉट फॉर एवर।
इस शक्ति से मुक्त कोई नहीं हो सकता,
नो वन कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड।
कोई भी आत्मा कहे कि हम सदा काल के लिए मुक्त हो जाएं,
इफ अ सोल सेज आई शुड बी लिबरेटेड फॉर एवर,
ये हो ही नहीं सकता,
दिस इज इम्पॉसिबल एट ऑल।
हर आत्मा का पार्ट अनेक जन्म का सुख दुख का मुदा हुआ है,
द पार्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड सोरो ऑफ एवरी सोल ऑफ मेनी बर्थ इज रिकॉर्डेड।
तो हर आत्मा को जब बाप आते हैं तो पहले नंबर के पास जाना पड़े,
व्हेन द फादर कम्स Every soul has to go near the number one soul.
और जब कलयुग कांत होता है तो पहले नंबर को भूल जाते और नंबरों के चक्कर में फंस जाते।
And when it is the end of the Iron Age, they forget the number one soul and get entangled in the clutches of other numbers.
बिखरते रहते।
They keep dispersing.
अभी तुम फिर से सत्य की लक्ष्मी आए बनने के लिए, पढ़ने के लिए आए हो।
Now you have come to study to become the golden age Lakshmi Narayan again.
सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ाई है?
Everyone is studying. Which study is it?
लक्ष्य क्या है?
What is the aim?
नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, लेकिन सब बन जाएंगे क्या?
To become Narayan from a man and Lakshmi from a woman. But will everyone become that?
सब तो नहीं बनेंगे।
नॉट एवरी वन विल बिकम दैट।
चलो पहले नंबर में नहीं बनेंगे।
ऑल राइट, दे वोंट बिकम दैट इन द फर्स्ट नंबर।
लेकिन नंबर बार तो बनेंगे, यथा राजा तथा प्रजा कही जाएगी ना।
बट दे विल डेफिनेटली बिकम दैट नंबर वाइज। इट विल बी सेड एज इज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स वांटेड।
कहने को तो भक्ति मार्ग में कह देते हैं नौ कोटि नारायण।
दे से नाइन क्रोर नारायण जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इन द पाथ ऑफ भक्ति।
कितने?
हाउ मेनी?
नौ करोड़ नारायण।
नाइन क्रोर नारायण।
क्योंकि पहला राजा नई दुनिया का होता ही है नारायण।
इट इज बिकॉज इट इज नारायण हु इज द फर्स्ट किंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड।
तो उसे नई दुनिया बना ले ने जो दुनिया बनाई उस दुनिया में यथा राजा तथा प्रजा अंत तक 21 जन्मों में कितने होते हैं?
सो द न्यू वर्ल्ड दैट ही क्रिएटेड एज इज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स। हाउ मेनी सोल्स आर देयर टिल द एंड ऑफ द 21 बर्थ्स?
जनसंख्या कितनी होती है?
हाउ मच इज द पॉपुलेशन?
9-10 करोड़।
9-10 crores।
तो सारे यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार क्या हो गए?
ऑन द बेसिस ऑफ द रूल एज इज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स। हाउ इज एवरीवन?
नारायण जैसे हो गए, नकली नंबर वार हुए।
दे आर इक्वल टू नारायण।
लेकिन अब्बल नंबर लक्ष्मी नारायण तो सिर्फ एक ही होते हैं।
हाउएवर ओनली वन कपल बिकम्स द नंबर वन लक्ष्मी नारायण।
ये राजयोग है ना?
दिस इज राजयोग इजंट इट?
ये राजधानी स्थापन हो रही है।
द कैपिटल इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड।
क्या इशारा दिया?
व्हाट इंडिकेशन वाज गिवन?
ऐसा क्यों होता है?
व्हाई डज दिस हैपन?
कि पढ़ाई तो नर से नारायण बनने की है तो सब क्यों नहीं नारायण बनते?
दैट द नॉलेज इज टू बिकम नारायण फ्रॉम अ मैन बट नॉट एवरीवन बिकम्स दैट।
क्यों नंबर वार?
स्टूडेंट नंबर वाइज। व्हाई आर दे नंबर वाइज?
जब डॉक्टरी की पढ़ाई है तो सब डॉक्टर बनते हैं ना?
When it is the study of medicine, everyone becomes a doctor, don't they?
डॉक्टर तो सब बनते हैं।
Everyone definitely becomes a doctor.
कोई चवन्नी कमाने वाले बनते हैं?
Some become those who earn just 25 पैसे।
कोई करोड़ों रुपया कमाने वाले बनते हैं?
And some become those who earn crores of rupees.
बनते तो है ना नंबर वाइज?
Everyone does become that number wise, don't they?
एक जैसे डॉक्टर तो नहीं कहेंगे?
They won't be called similar doctors.
ऐसे ही यहाँ भी है।
The same case is here as well.
ये भी राजधानी तैयार हो रही है।
The capital is being established.
राजधानी में सब नंबर वार चाहिए।
Everyone is required in it number wise.
एक नंबर के नहीं हो सकते।
Everyone can't be number one.
क्या?
What?
सब नारायण सब राजा बन जाए ये नहीं हो सकता।
It isn't possible that everyone becomes Narayan or a king.
तो राजधानी स्थापन हो रही है।
So the capital is being established.
ये राजधानी किसने स्थापन की?
Who established it?
और धर्म पिताएं आते हैं वो राजधानी स्थापन नहीं करते।
When the other religious fathers come, they don't establish their capital.
वो तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करके चले जाते हैं।
They just establish their religion and go back.
300-400 वर्षों के बाद जब उनकी बहुत प्रजा बन जाती है उस धर्म की फॉलो करने वाली तब राजाई शुरू होती है।
When the number of subjects who follow that religion increases a lot after 300-400 years, it is then that their kingship begins.
तो धर्मपिताओं के द्वारा तो राजधानी स्थापन होती ही नहीं।
सो द किंगशिप इजंट एस्टैब्लिश्ड बाय दोस रिलीजियस फादर्स एट ऑल।
मैं आता हूँ तो क्या करता हूँ?
व्हाट डू आई डू व्हेन आई कम?
धर्म की स्थापना और धर्म की स्थापना के बाद राजधानी भी स्थापन करता हूँ। जितना धर्म की ईश्वरीय धारणाओं को धारण किया परीक्षा होने के बाद उनको उसी नंबर की राजाई उसी नंबर का अधिकार नई दुनिया में मिल जाता है।
आई एस्टैब्लिश द रिलीजन एंड आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिलीजन आई एस्टैब्लिश द कैपिटल एज वेल। द मोर समवन हैज असिमिलेटेड द ईश्वरीय धारणास ऑफ द रिलीजन दे रिसीव द किंगशिप एंड द अथॉरिटी एट द सेम नंबर इन द न्यू वर्ल्ड आफ्टर द एग्जामिनेशन।
राजधानी किसने स्थापन की, ये कब कोई की बुद्धि में नहीं आता है।
Who established the capital? This doesn't come in anyone's intellect.
कि स्वर्ग की राजधानी किसने स्थापन की?
Who established the capital of heaven?
नरक की दुनिया बनाने वाले तो फिर भी समझ में आ जाते हैं। स्वर्ग की राजधानी किसने स्थापन की?
It is still possible to understand who created the world of hell. Who established the capital of heaven?
जो करेगा सो पाएगा।
The one who does it will receive the attainments.
अच्छा, तो शिव बाबा अगर राजधानी स्थापन करता है तो शिव बाबा को राजधानी पानी चाहिए ना?
अच्छा, if शिव बाबा established the capital, he alone should be entitled to it, shouldn't he?
शिव बाबा राजधानी में राजा बनकर के बैठता है?
Does शिव बाबा become the king in the capital?
नहीं बैठता।
He doesn't. Then?
शिव बाबा राजधानी स्थापन करने में सहयोग देता है।
शिव बाबा helps to establish the capital.
राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई पढ़ाता है।
He teaches the study to establish it.
और जो जितनी सेवा करे वो उतना ऊंचा पद राजधानी में प्राप्त कर सकता।
Well, the more someone does service, the higher the position he can attain in the capital.
एक तरफ कहते हैं सारी सेवा बाप दादा करते हैं।
On one side, you say, it is बाप दादा who does all the service.
हम बच्चे तो तमो प्रधान हैं।
We children are definitely तमो प्रधान।
तमो प्रधान आत्मा सेवा कर नहीं सकती।
A तमो प्रधान soul can't do service.
तो बाप दादा को ही राजा ही मिलनी चाहिए ना?
So, बाप दादा himself should receive the kingship, shouldn't he?
राजधानी में हिस्सा किसको मिलना चाहिए?
Who should receive the share of the capital?
अरे? बाप दादा को मिलना चाहिए?
बाप दादा should get it. Then?
लेकिन जब राजधानी स्थापन होती है संपन्न स्टेज में, उस समय बाप या दादा उनको अपना शरीर होता है।
But when the capital is established in its complete form, does the father or dada have their own body at that time?
बाप सुप्रीम सोल को अपना शरीर होता है।
Does the supreme soul father have his own body?
नहीं होता।
He doesn't.
और दादा को? कृष्ण की सोल को?
What about dada, alias the soul of Krishna?
उनको भी अपना शरीर नहीं होता।
He doesn't have his own body either.
तो जिनको अपना शरीर ही नहीं होता उनको पाप पुण्य कुछ मिल भी नहीं सकता।
So, those who don't have their own body, they can't accumulate sins or merits either.
तो जिसके तन के द्वारा वो प्रवेश करके राजधानी स्थापन करते हैं,
the body which he enters and establishes the capital,
धर्म की स्थापना हो चाहे राजधानी की स्थापना हो,
be it the establishment of the religion or the capital,
राजा की स्थापना के लिए लड़ाई तो करनी पड़ती है।
यू डेफिनेटली हैव टू फाइट अ वॉर टू एस्टैब्लिश द कैपिटल।
दुनिया में इस धूल लड़ाई लड़नी पड़ती है, हिंसा की लड़ाई लड़नी पड़ती है।
पीपल हैव टू फाइट अ फिजिकल एंड वायलेंट वॉर इन द वर्ल्ड।
तब हिंसक राजा की स्थापना होती है।
इट इज देन दैट दे एस्टैब्लिश द वायलेंट किंगशिप।
अभी स्वर्ग की राजधानी स्थापन होने वाली है।
Now, the kingship of heaven is going to be established.
तो यहाँ हिंसक लड़ाई है या अहिंसक लड़ाई है?
So, is it a violent or non-violent war here?
ज्ञान की लड़ाई है।
It is a war of knowledge.
Vibration का युद्ध है।
The war of vibrations.
सच्चाई क्या है और असत्य क्या है?
What is truth and what is false?
इसका पर्दा फाश होना।
This has to be revealed.
ये पर्दा फाश करने के लिए,
In order to reveal the truth,
धर्म की स्थापना करने के लिए,
To establish the religion,
धर्म के धक्के तो खाने पड़ते हैं।
You definitely have to suffer the blows of religion, don't you?
धर्म के धक्के आत्मा खाती है, आत्मिक रूप में होने के बाद यह शरीर को खाना पड़ता है।
Does the soul suffer the blows of religion after stabilizing in the form of the soul, or does the body have to suffer it?
शरीर को धक्का खाना पड़ता है।
The body has to suffer blows.
तो जो धक्के खाता है उसी को राजाई मिल जाती।
So the one who suffers blows receives the kingship.
हिसाब बना हुआ है।
There is the calculation.
इस शरीर के द्वारा जो जितनी मनसा वाचा करुणा मेहनत करता है, मेहनत नहीं करता वास्तव में।
The more someone works hard through the mind, speech and actions through this body, actually he doesn't work hard.
सिर्फ मोहब्बत में रहे तो भी प्राप्ति होती है।
If he just stays absorbed in love, he makes the attainments.
लेकिन कहा तो जाता है किसने किया?
But it is definitely mentioned who did that.
ऐसे थोड़े कहेंगे आत्मा ने किया।
It definitely won't be said that the soul did it.
आत्मा ने सेवा की।
The soul did the service.
ए आत्मा इधर आओ।
It won't be said, oh soul, come here.
क्या कहेंगे?
What will be said?
शरीरधारी की क्या नाम बोला जाएगा ना?
The name of the bodily being will be mentioned, won't it?
तो हिम्मत बच्चे करते हैं, उस हिम्मत के उजूरे में उनको उनका वर्षा प्राप्त हो जाता है।
So the children show the courage and they receive the inheritance in its return.
कलयुग में इतने ढेर के ढेर मनुष्य हैं।
There are numerous human beings in the Iron Age.
अभी देखो खाने के लिए अनाज नहीं मिलता है।
Now look, they don't get food to eat.
दो चार सौ वर्ष पहले परिवार का एक मुखिया कमाता था।
Only the head of the family used to earn money before 200 to 400 years.
और बड़े बड़े परिवार होते थे, सारे मिलकर के खाते थे। और अभी?
There used to be joint families and all the members used to eat together. And what about now?
परिवार का हर सदस्य कमाई कर रहा है।
Each member of the family is earning money.
और फिर भी पूर्ति नहीं हो पा रही।
Nevertheless, they aren't able to fulfill their needs.
उड़ीसा में तो भूख मर रहे।
People are starving to death in Odisha.
अभी अकाल पड़ने वाला है।
Now the famine is going to occur.
क्या?
What?
जब बिना शुरू होगा।
When the destruction begins.
तो सबसे पहले कौन सा कहर डलना शुरू होगा?
Which disaster will befall first of all?
सबसे पहले प्रकृति कहर आएगी।
The nature will show its fury first of all.
क्या कहर आएगी?
What will she do?
पानी की बूंद नहीं मिलेगी। भूकंप तो होगा बाद में।
Student, earthquakes. You won't get even a drop of water to drink. The earthquakes will definitely occur later.
जब एटमिक विस्फोट होंगे।
When there are atomic explosions.
पृथ्वी का बैलेंस डोल जाएगा।
The earth will lose its balance.
भारतवर्ष में कड़ा विनाश भूकंप से नहीं होता है। एटम बम फटने से नहीं होता है।
The massive destruction doesn't take place through earthquakes and atomic explosions in the land of Bharat.
यहाँ कड़ा विनाश होता है आपस की मारामारी से।
Here, the massive destruction takes place through beating and killing each other.
खून खार नदियाँ बहती हैं भारत में।
The rivers of blood flow in India.
भारत में भी दिल्ली कब्रिस्तान बनती है, फिर दिल्ली परिस्तान बनती
है। Even within India, Delhi becomes a graveyard and then it becomes the land of fairies.
तो शुरुआत होती है अकाल से।
So the destruction begins with famine.
पानी की बूंद नहीं मिलेगी।
You won't get a drop of water to drink.
अभी भी क्या हाल है?
What is the condition even now?
है? अभी भी शहरों में जाके देखो बाल्टियां ले लेकर के टैंकरों के पास खड़े हुए मिलेंगे।
Go and see in the cities even now. You will find people standing with buckets near the water tanks.
अभी तो अकाल है ही नहीं।
There isn't famine now.
अभी अकाल घोषित हुआ क्या?
Has the famine been declared now? It hasn't.
लेकिन अकाल के आसार नजर आ रहे हैं.
But its signs are visible.
जहाँ बरसात पड़ती है तो ढेर बरसात होती रहती.
Where there is rainfall, it rains heavily there.
और जहाँ नहीं होती है तो बिल्कुल बरसात नहीं.
And where there isn't rainfall, it doesn't rain there at all.
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन सब का बैलेंस बिगड़ता जा रहा है.
The balance of earth, water, air, fire and sky is continuously being disturbed.
बिगड़ते बिगड़ते ऐसी स्टेज आ जाएगी कि सहन करना मुश्किल हो जाएगा.
It will continue to get disturbed and reach such a stage that it will be difficult to bear it.
तो ढेर के ढेर मनुष्य अकाल में मरेंगे.
So, numerous people will die in the famine.
मारामारी शुरू हो
जाएगी. Then, they will start beating and killing each other.
मरता क्या नहीं पड़ता.
A drowning man will catch at a straw.
किसी को खाने को न मिले, एक दिन नहीं, चार दिन नहीं, आठ दिन नहीं, दस दिन नहीं, लगातार मार बच्चे हैं, मुंह को मिलमिलाने लगे, तो आदमी क्या करेगा?
If the one who doesn't get anything to eat for one day, 2 days, 4 days, 8 days, 10 days, if his children continue to starve, what will he do?
चोरी चकारी करेगा, डकैती करेगा, मारामारी कर देगा.
He will steal, rob something and engage in beating and fighting.
कि कहाँ तो गवर्नमेंट के स्टाफ में हजारों लाखों गोलियां पड़ी हुई और कहाँ मनुष्य भूख मर रहे हैं.
On one side, there are thousands and lakhs of sacks full of food grains kept in the government stock. And on the other side, people are starving to death. So, this is disorder, isn't it? That disorder will reach its peak. There are crores of people in the Iron Age, whereas there are few number of Lakshmi Narayan in the Golden Age. What will be there in their kingdom? There will be very few people. The nature will be Sato Pradhan. Not even a single human being needs to earn money there. What is this?
कलयुग में परिवार का हर मनुष्य कमाई कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है.
Each member of the family is earning money in the Iron Age. They are working so hard.
और सतयुग में कोई कमाई नहीं करेगा.
However, no one will earn money in the Golden Age.
फिर कहाँ से आ जाएगी? प्रकृति इतना सहयोगी बन जाएगी. आबादी जनसंख्या इतनी कम हो जाएगी कि प्रकृति का जो सहयोग है भरपूर.
Then where will you receive everything from? The nature will become so helpful. The population will be so limited that there will be full support of the nature.
प्रकृति से जो भी मिलेगा वो इतना भरपूर होगा कि कमाई कमाने की दरकार रहेगी.
You will receive enough from the nature that you don't need to earn money there. There is the capital of these Lakshmi Narayan there. So, who showed this miracle?
ये करिश्मा किसने किया?
Who showed this miracle?
थोड़े दिन पहले मुरली माया था, माया की तुलसम बाजी.
It was mentioned in a murli a few days ago, the tulsam baji of Maya. Tulsam baji means miracle, being one from within and something else from outside.
माया का करिश्मा.
The miracle of Maya.
और अभी बोला स्वर्ग में जो इतना करिश्मा होता है भरपूर मिलता है, वो करिश्मा कौन करता है?
नाउ इट वाज आस्क्ड हु शोज द मिरेकल इन हेवन दैट यू गेट एनफ ऑफ एवरीथिंग।
यहाँ तो कितने धर्म हैं?
देयर आर सो मेनी रिलीजन्स हियर।
और सामने महाभारत महाभारत लड़ाई भी खड़ी हुई है।
The massive war of Mahabharat is also standing ahead.
कहाँ कितने धर्म?
Where are there many religions? Student, in the Iron Age.
कलयुग में कितने धर्म?
There are many religions in the Iron Age.
कहाँ माने स्थान से मतलब होता है?
Where refers to a place?
भारत।
In India.
और भारत में भी सबसे ज्यादा धर्मों की आबादी दिल्ली।
इन इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम वेरियस रिलीजन्स इज प्रेजेंट इन दिल्ली।
दिल्ली में हर धर्म की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा तादाद मिलेगी।
यू विल फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्स ऑफ एवरी रिलीजन इन दिल्ली।
सिख भी वहाँ ढेर सारे अड्डा जमाए बैठे, क्रिश्चियंस भी ढेर सारे अड्डा जमाए बैठे, मुसलमान भी अड्डा जमाए बैठे, ऐसे सारे भारत में मुसलमान थे और हिंदू भी वहाँ अड्डा जमाए बैठे।
न्यूमरस सिख्स क्रिश्चियंस एज वेल एज द मुस्लिम्स हैव सेटल्ड डाउन देयर। एज सच द मुस्लिम्स आर प्रेजेंट इन द एंटायर इंडिया, द हिंदूज टू हैव सेटल्ड डाउन देयर।
बौद्धियों का भी बड़ा जजीरा।
द बुद्धिस्ट हैव अ बिग थ्रॉंग देयर।
क्यों?
व्हाई?
एक दिल्ली दुनिया में ऐसा शहर क्यों है जहाँ ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में हर धर्म की आत्माएं मौजूद
है? व्हाई इज दिल्ली द ओनली सिटी इन द वर्ल्ड वेयर द सोल्स ऑफ एवरी रिलीजन आर प्रेजेंट इन मैक्सिमम परसेंटेज?
क्या कारण?
व्हाट इज द रीजन?
दिल्ली है।
दिल्ली इज स्टूडेंट द कैपिटल। यस
दिल्ली है।
दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ एवरी रिलीजन।
दिल्ली जो है वो जगत की माता है।
शी इज द मदर ऑफ द वर्ल्ड।
तो सारे जगत की माता है तो सारे जगत के जो विश्व धर्म है वो कहाँ जाके शरण ले?
सो व्हेन शी इज द मदर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड वेयर शुड द सोल्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड टेक रिफ्यूज?
माता की गोद में जाके शरण लेते।
दे टेक रिफ्यूज ऑन द मदर्स लैप।
तो देखो यहाँ कितने धर्म हैं।
सो लुक देयर आर सो मेनी रिलीजन्स हियर।
और सामने महाभारत लड़ाई भी खड़ी है।
एंड द मैसिव वॉर ऑफ महाभारत इज आल्सो स्टैंडिंग अहेड।
मनुष्यों की आंखें थोड़े खुली।
पीपल डोंट रियलाइज इट एट ऑल। व्हाट?
क्या इशारा दिया?
व्हाट इंडिकेशन वाज गिवन?
सारी दुनिया में इतने धर्म हैं।
देयर आर सो मेनी रिलीजन्स इन द वर्ल्ड।
इतने धर्म सारी दुनिया में पहले होने चाहिए।
दे शुड बी प्रेजेंट इन द एंटायर वर्ल्ड।
लेकिन एक भारत है जहाँ सब धर्म मौजूद है।
बट इट इज ओनली इंडिया वेयर ऑल द रिलीजन्स एग्जिस्ट।
और उसमें भी दिल्ली में सबसे ज्यादा हर धर्म की आत्मा मौजूद है।
इन फैक्ट इट इज दिल्ली वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स आर प्रेजेंट।
तो झगड़ा और मारामारी कहाँ होगी सबसे ज्यादा?
सो वेयर विल बीटिंग एंड किलिंग टेक प्लेस द मोस्ट?
दिल्ली में ही होगी।
डेफिनेटली इट विल बी इन दिल्ली।
कहते हैं मनुष्यों की आंखें थोड़े खुली हैं।
इट इज सेड पीपल डोंट रियलाइज इट एट ऑल।
अभी भी आंखें बंद हैं।
दे डोंट हैव द रियलाइजेशन इवन नाउ।
ये बात उनकी बुद्धि में ही नहीं आती।
इट डजंट कम इन देयर इंटेलेक्ट एट ऑल।
कितना विभेद जो फैला हुआ है दुनिया में सबसे जास्ती दिल्ली के अंदर, तो उसका अंजाम क्या होने वाला है?
What will be the result of the discrimination spread in the entire world and in Delhi the most?
भारत में और दिल्ली में जितना जातिवाद फैला हुआ है उतना जातिवाद दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं, किसी भी शहर में नहीं।
The extent to which racism prevails in India and Delhi, it doesn't prevail in any other part or city of the world to that extent.
जितनी राजनीतिक पार्टियां दिल्ली के अंदर हैं, भारतवर्ष के अंदर हैं, उतनी राजनीतिक पार्टियां और उनको आपस में मुड़फोकटोल दुनिया के किसी भी देश में नहीं.
The extent to which political parties and the conflicts caused by them prevail in Delhi, in the land of Bharat, they don't prevail in any other country of the world to that extent.
जितना भाषाओं का झगड़ा दिल्ली के अंदर है, भारतवर्ष के अंदर जितनी भाषाएं फैली हुई हैं और उन भाषाओं को लेकर के आपस में मुड़फुटटोल हो रही है, उतनी दुनिया के किसी भी देश और शहर में नहीं.
The extent to which there are disputes over languages in Delhi, the extent to which the languages and the conflicts caused by them exist in the land of India, it doesn't exist in any other country or city of the world to that extent.
इन सब बातों का आखिर अंजाम क्या होगा?
Finally, what will be the result of all these things?
महावारी महाभारत ग्रहियों के सामने खड़ा हुआ है.
The massive civil war of Mahabharat is standing ahead.
अभी अंदर अंदर आग सुलग रही है.
Now the fire is kindling from within.
ये सुलगती हुई आग कब विकराल रूप धारण कर ले किसी को पता ही नहीं.
No one knows when this kindling fire will take on a fearsome form.
ये महावारी महाभारत लड़ाई 5-4 वर्ष पहले भी यही हुई थी.
This massive war of Mahabharat broke out here itself 5000 years ago.
यादगार में दिल्ली के पास कुरुक्षेत्र का मैदान भक्ति मार्ग से दिखाया
हुआ. The field of Kurukshetra has been shown near Delhi in the path of Bhakti as its yadgar.
दिल्ली में उजड़ा हुआ पांडवों का किला भी यादगार बनी हुई.
The ruined fort of the Pandavas is also built in Delhi as its yadgar.
परंतु महाभारत युद्ध होने के बाद फिर क्या हुआ? वो भी किसी को पता नहीं.
However, no one knows what happened after the Mahabharat war.
अरे इतना बड़ा युद्ध होगा?
अरे, if such a great war takes place,
तो युद्ध में किसी की विजय होगी या हार होगी या कुछ होगा तो ना?
There will definitely be someone's victory or defeat in it. There will definitely be an outcome of the decision born there.
It
is shown in the scriptures that the Pandavas became victorious. And the Kauravas and the Yadavas were destroyed.
So, जिनकी विजय होगी वो अपनी राजधानी स्थापन करेंगे या नहीं करेंगे?
So, will those who become victorious establish their capital or not? But something like this has been shown in the scriptures. What has been shown? The Pandavas went in a high stage and melted to death. So, the writers of the scriptures think that they would have gone on a mountain.
बर्फ पड़ी होगी, उस बर्फ में गल के मर गए होंगे.
It would have snowed there and they would have melted to death in it.
अब ऐसी कोई बात नहीं है.
Well, there is no such thing.
ये तो ऊंची स्टेज की बात है.
It is about a high stage.
आत्मा जब बहुत ऊंची स्टेज में उड़ती है परम धाम की ओर.
When the soul flies in a very high stage towards the supreme abode,
तो निराकारी बन जाती.
It becomes incorporeal.
निराकारी बनती है.
When it becomes incorporeal,
तो निर्विकारी हो जाती.
It becomes wiseless.
निर्विकारी तो निर्विकारी.
The one who is wiseless is egoless.
ये तीनों ही गुण आत्मा में आ जाते हैं.
The soul assimilates all these three virtues.
संकल्पों का खून जाम हो जाता है.
The blood of thought freezes.
जैसे बर्फ जमती है ना, तो पानी जाम हो जाता है.
Just like the water freezes to become ice.
खून अगर गर्म होगा,
if the blood is warm,
तो बहेगा.
It will flow.
अब खून बहुत ही ठंडा हो जाए 0 degree में, तो जाम हो जाए.
But if it becomes very cold 0 degree Celsius, it will freeze.
तो ऊंची स्टेज में गल मरे का मतलब देवानु को गला दिया.
So, they melted to death in a high stage means they melted their body consciousness.
जो जो अपने देहभान से गलते जावेंगे मरते जावेंगे वो स्वर्ग में जावेंगे. बिना मरे स्वर्ग मिलता नहीं है.
All those who continue to melt from their body consciousness and die, they will go to heaven. You can't attain heaven without dying.
कोई स्थूल मरने की बात
नहीं. It isn't about dying physically.
शरीर से मरने की बात
नहीं. Or dying from the body.
देहभान से जो जो मरते जाएंगे,
those who die from body consciousness,
उनके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांच विकार खलास होंगे.
The five vices, namely lust, anger, greed, attachment, and ego, will be destroyed.
तो वो देवता बन जाएंगे.
And they will become deities.
देवताएं तो निर्विकारी होते.
The deities are definitely viceless.
तो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि महाभारत युद्ध के बाद फिर क्या हुआ.
So, the human beings don't know anything what happened after the massive war of Mahabharat.
ये नारी तो ब्रह्मा मुखवंशा वाली ब्राह्मण ब्राह्मणिया जानते
हैं. The Brahma Mukhvansha Vali Brahmins and Brahmanis, that is female Brahmins, have this knowledge.
Yeah.
What?
जो ब्रह्मा मुखवंशा वाली ब्राह्मण ब्राह्मणिया.
Those who are Brahma Mukhvansha Vali Brahmins and Brahmanis.
ब्रह्मा कुकवंशावली नहीं.
Not the ब्रह्मा कुकवंशावली ब्राह्मण्स.
जो कुकवंशावली है ब्रह्मा की कोख में जिन्होंने आनंद लिए हैं.
Those who are Kukvanshavali, those who have experienced pleasure on the lap of Brahma,
उनको ब्रह्मा की कोख माना गोद ही याद आती रहती है.
They keep remembering only his lap, that is cook.
उनको उनके मुख से निकला हुआ ज्ञान याद नहीं आता.
They don't remember the knowledge uttered through his mouth.
उस पर वो ध्यान भी नहीं देते.
In fact, they don't even pay attention to it.
अगर ध्यान दिया होता,
had they paid attention to it,
उसकी वैल्यू दी होती,
had they valued it,
तो ब्रह्मा से के मुख से निकली हुई वाणी को टैप रिकॉर्ड में भर करके स्वच्छित किया होता.
They would have secured the vani narrated through the mouth of Brahma by recording it in the tape recorders.
या जो भी वाणियां चली उन वाणियों को सार वाइज सुरक्षित करके रखा होता.
और they would have secured all the vanis that were narrated year wise.
अथवा साक्षात्कार से जो उस समय चित्र बाबा के द्वारा बनवाए गए थे वो पुराने चित्रों को सुरक्षित करके रखा होता.
प्लस they would have secured the old pictures that Baba had prepared on the basis of visions at that time.
न चित्रों को सुरक्षित करके रखा, न टैप की हुई वाणी को सुरक्षित करके रखा, न कागज में छपी हुई मुरलियों को सुरक्षित करके रखा.
They neither secured the pictures, the recorded vanis, nor did they secure the murlis printed on the paper.
इसका मतलब उनको मुख से निकली हुई वाणी की कोई वैल्यू नहीं हुई.
It means they didn't value the vani that was narrated through his mouth.
तो उनको मुखवंशावली ब्राह्मण कहेंगे.
So will they be called मुखवंशावली ब्राह्मण्स?
नहीं.
No.
अभी भी उनको ब्रह्मा की गोद, ब्रह्मा का चेहरा मोहरा, ब्रह्मा का शरीर याद आता रहता.
They keep remembering Brahma's lap, facial expressions and body even now.
जिसको जिससे लगाव लग जाता है तो बस वो उसी के गुण गाता है.
When someone becomes attached to a person, he keeps singing the songs of only his praise.
उसके अलावा उसको और कुछ भी सूझता नहीं है.
He doesn't think anything else except him.
तो उनकी बुद्धि में ये बात बैठ ही नहीं सकती कि गीता का भगवान कृष्ण दादा लेखराज के अलावा कोई दूसरा व्यक्तित्व भी संसार में हो सकता है.
So, this can't sit in their intellect that any other personality can also be God of the Gita apart from Krishna, that is Dada Lekhraj.
वो इस बात को मान ही नहीं सकते.
They can't believe it at all.
और शिव बाबा ने मुरली में ये बोला है.
However, शिव बाबा has said in the Murli,
कि जब से गीता का भगवान कृष्ण गीता शास्त्र में उसका नाम डाला गया तब से दुनिया का पतन हुआ।
Ever since the name of Krishna, God of the Gita, was mentioned in the scriptures, the world experienced downfall.
जो पाश्चात्य अन्वेषक हैं, खोजबीन करने वाले विद्वान, उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पहले गीता निराकारवादी रचना थी, उसमें कृष्ण का नाम नहीं था।
The foreign researchers, the scholars who do research work, have mentioned in their books, the Gita was an incorporeal creation earlier. The name of Krishna wasn't mentioned in it.
बाद में,
later on,
कृष्ण के followers ने निराकारवादी रचना में से corruption करना शुरू कर दिया।
The followers of Krishna started adulteration in the incorporeal creation.
साकार का नाम डाल दिया।
They added the name of the corporeal one in it.
जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हुई।
That's right. The shooting was performed in the Brahmin world.
पहले क्या होता था?
What used to happen earlier?
पहले मुरली में पिताश्री लिखा हुआ नहीं आता था।
Earlier, the word पिताश्री wasn't mentioned in the मुरली।
सिर्फ आता था एक शिव बाबा याद है।
It was only written. Do you remember one शिव बाबा?
मम्मा ने जब से शरीर छोड़ा या मम्मा जब से हॉस्पिटलाइज हुई मधुबन से दूर हुई तो उन कृष्ण के पुजारियों को मौका मिलने लगा।
Ever since mamma left her body or she was hospitalized, she became distant from the Madhuban. The worshippers of Krishna started getting a chance.
उन्होंने पिताश्री का नाम मुरलियों में डालना शुरू कर दिया।
They began to add the word Pitashri in the Murlis.
यहाँ शूटिंग हुई और भक्ति मार्ग में वहाँ प्रैक्टिकल में हो जाता है।
The shooting was performed here and it happens in the path of bhakti in practice.
कृष्ण का नाम डाल दिया जाता है और लोग भूल जाते हैं कि ये गीता जो है वो निराकार परमात्मा ने सुनाई।
They add the name of Krishna and people forget that the incorporeal supreme soul narrated the Gita.
अगर सभी की बुद्धि में ये बैठा होता कि वो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर शिव ज्योति बिंदु जो ज्योति है वो ही गीता ज्ञान आकर के सुनाता है तो सारी दुनिया निराकार को मानती और भारत को अपना तीर्थ स्थान मानती या कोई दूसरे देश को मानती।
Had it sat in everyone's intellect that the incorporeal Param Brahma, God Shiv, the point of light, the one who is the point himself, comes and narrates the knowledge of the Gita, the entire world would have believed in the incorporeal one. Would they consider India or any other country their pilgrimage place?
क्योंकि दूसरे धर्म के टाइम भी तो उसे निराकार की तरफ इशारा करके गए।
It is because the other religious fathers have also indicated the incorporeal one. Everyone have been misled.
भारतवासियों का भी नुकसान हुआ खास और विदेशियों का भी नुकसान हुआ आम।
The Bharatvasi suffered loss in particular and the foreigners in general.
अब ये गलती जब तक नहीं सुधारी जाएगी
Now, until this mistake is rectified,
तब तक न भारत का सुधार होगा न दिल्ली का सुधार होगा और न दुनिया का सुधार होगा
Neither India, Delhi, nor the world will be reformed.
ओम शांति।